जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यमुना जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की श्रील प्रभुपाद की। तो आज हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद से 24वें अध्याय से पढ़ रहे हैं। शिवजी द्वारा की गई स्तुति का गान, श्लोक क्रमांक है 4। पावकः पवमानः च शुचि इति अग्नयः पुरा वसिष्ठ शापात् उत्पन्नः पुनः योगगतिं गताः। पावका पवनाम पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठ शापाद् उत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गतः। पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठ शापाद् उत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गतः। पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठ शापाद् उत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गतः। वसिष्ठ शापाद् उत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गतः। शुचिरित्यग्नया पुरा पुनर्योगगतिं गतः। पावकः पवमानश्च वसिष्ठ शापाद् उत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः। पावकः पावमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा वसिष्ठ शापाद् उत्पन्नाः पुनर्योगगतिं गताः। तो स्कंद 4 अध्याय 24 श्लोक 4। पावकः पावक नामक पवमानः पवमान नामक च भी शुचि शुचि नामक इति इस प्रकार अग्नयः अग्निदेव पुरा प्राचीन काल में वशिष्ठ मुनि शापात शाप से उत्पन्नः अब उत्पन्न पुनः फिर से योग गतिम योगाभ्यास का पद गताः प्राप्त किया। अनुवाद और तात्पर्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। महाराज अंतर्धान के तीनों पुत्रों के नाम थे पावक पवमान तथा शुचि। पूर्व काल में ये तीनों व्यक्ति अग्निदेव थे, परंतु वशिष्ठ ऋषि के शाप से वे महाराज अंतर्धान के पुत्रों के रूप में उत्पन्न हुए। फलतः वे अग्निदेवों के ही समान शक्तिमान थे और फिर से अग्निदेवों के रूप में स्थित होने के कारण उन्होंने योग शक्ति का पद प्राप्त कर लिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, भगवद गीता छठवां अध्याय 41 से 43 में कहा गया है कि जो योगाभ्यास से नीचे गिरता है वो स्वर्ग लोक जाता है और वहां सुख भोग कर पुनः पृथ्वी पर आता है और किसी धनी कुल में या पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है। अतः ये समझना चाहिए कि जब देवता भ्रष्ट होते हैं तो वे पृथ्वी पर अन्य धनी तथा पवित्र कुलों में जन्म लेते हैं। ऐसे परिवारों में कृष्ण भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है जिससे उन्हें वांछित गंतव्य प्राप्त होता है। महाराज अंतर्धान के पुत्र अग्नि के अधीक्षक देवता थे, उन्होंने अपनी पूर्व स्थिति प्राप्त की थी और योग बल से वे स्वर्ग को चले गए। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक की पार्श्वभूमि इस प्रकार से है कि महाराज पृथु का अध्याय आख्यान पूरा करने के पश्चात अभी सुखदेव जी प्रचेतस का जो कथा है उसको आरंभ कर रहे हैं और प्रचेत जो थे वो प्रचिनी बरही के पुत्र थे और वो कौन से वंश में उनका जन्म हुआ इसका वर्णन अभी शुरू हो गया है। जैसे तीन श्लोक है उसको हम पढ़ सकते हैं। जैसे महाराज पृथु का सबसे बड़ा पुत्र विजिताश्व जिनकी ख्याति अपने पिता की तरह थी राजा बना और उसने अपने छोटे भाइयों को पृथ्वी की विभिन्न दिशाओं पर राज्य करने के लिए अधिकार सौंप दिया क्योंकि वो अपने भाइयों को अत्यधिक चाहता था। महाराज विजिताश्व ने संसार का पूर्वी भाग अपने भाई हर्यक्ष को, दक्षिणी भाग धूम्रकेश को, पश्चिमी भाग वृक को और उत्तरी भाग द्रविड़ को प्रदान किया। पूर्व काल में महाराज विजिताश्व ने स्वर्ग के राजा इंद्र को प्रसन्न करके उनसे अंतर्धान की पदवी प्राप्त की थी। उनकी पत्नी का नाम शिखंडिनी था जिससे उन्हें तीन उत्तम पुत्र हुए। और फिर आज का श्लोक आता है, महाराज अंतर्धान के तीन पुत्रों के नाम थे पावक पवमान और शुचि। तो इस प्रकार से ये वंशावली आगे बढ़ती है। उस वंशावली में फिर राजा बरहिशत यानी प्रचिनी बरही का जन्म होता है और उनका विवाह होता है और उन्हें 10 पुत्र होते हैं और फिर वो जाकर जलाशय में एकत्र खड़े होकर भगवान शिव जी को प्रसन्न करते हैं। फिर शिव जी उनको प्रार्थनाएं देते हैं और वो प्रार्थनाओं को फिर दोबारा वो जल में खड़े रहकर पढ़ते हैं और तपस्या करते हैं एक साथ रहकर, और उसमें विष्णु दर्शन देते हैं उनको। और फिर उनका बहुत इस अध्याय में बहुत सुंदर बात हमको सीखने को मिलती है कि कैसे सहयोग भगवान को बहुत प्रिय है। श्री प्रभुपाद जी भी कहते थे कि अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो आप एक दूसरे से सहयोग कीजिए। इसी बात को प्रचिनी भरिषद के पुत्र प्रचित की कथा में हम सीखते हैं कि भगवान शिव पहले और बाद में भगवान विष्णु दोनों भी उनको यही बताते हैं कि आपसे मैं प्रसन्न हूं, आपको मैं दर्शन दे रहा हूं, इसका कारण यही है कि आप सब लोगों ने साथ मिलकर हाथ पकड़कर एक साथ में तपस्या की है, एक साथ में सेवा की है, एक साथ में कार्य किया है। तो भगवान को प्रसन्न करने का एक एक सुंदर तरीका है कि हम हमारे साथी भक्तों के साथ सहयोग करें, अपने अपने अहंकार को या अपने अपने गर्व को या अपने अपने स्थान को या अपनी योग्यता को सोचते हुए उसको असहयोग न करें। ये सब को छोड़कर जो हमारा भगवान की सेवा है उसके लिए जो अनुकूल है उसके अनुसार कार्य करें। ये इस अध्याय में आपको आगे सुनने को मिलेगा। आज का जो श्लोक है उसमें महाराज अंतर्धान का वर्णन आता है। अब इनका नाम अंतर्धान है, इसका मतलब यह हुआ कि ये अंतर्धान होने की कला में बड़े निपुण थे। और बड़ी विचित्र कथा है इनकी कि कैसे उनको ये अंतर्धान होने की कला प्राप्त हुई। हमारे नासिक में वो ब्रह्मगिरी है जहां पर ब्रह्मा जी ने तपस्या किया था और वहां पर शिव जी ने भी तपस्या किया था, निवास किया था, और उनके जटाओं को झटकने के द्वारा गोदावरी गंगा का निर्माण हुआ था। वो पर्वत है वो, यानी कि हम अभी त्र्यंबकेश्वर जाएंगे मन से, तो त्र्यंबकेश्वर में बहुत सुंदर पहाड़ है ब्रह्मगिरी, वहां से गोदावरी जी का उगम होता है। और वहीं पर एक लीला है गौतम ऋषि का वहां पर आश्रम है। और गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे और उनकी पत्नी भी बड़ी पतिव्रता थी, लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि इंद्र उस पर मोहित हो गए। और इंद्र ने क्या किया, जब गौतम ऋषि तपस्या में बैठे थे तो इंद्र ने गौतम ऋषि का रूप धारण किया और वो घर आए, तो पत्नी का आनंद हुआ, पति आए तो उन्होंने सेवा की उनकी, तो गौतम ऋषि के रूप में इंद्र ने उसका भोग किया। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं आगे उन्होंने बलात्कार किया उसके ऊपर, क्योंकि उसको पता नहीं था कि वो कौन है। वो बेचारी पतिव्रता सरल हृदय थी, पति आ गया तो उनकी सेवा किया। और जब कुछ देर बाद गौतम ऋषि लौट के आए तो देखा कि उनके संग और कोई है, तो वो अपने योग बल से समझ गए कि ये तो इंद्र है। तो इंद्र भी उनके योग बल और तेज के सामने अपने छद्म रूप को बनाए नहीं रख सके, वो इंद्र रूप में आ गए। तो फिर गौतम ऋषि ने उनको शाप दिया कि आपके सारे आपको शरीर में आंखें ही आंखें होंगी। इसलिए इंद्र के शरीर में जैसे हमारी दो आंखें हैं, इनकी यहां पर भी आंखें हैं, इनकी यहां पर भी आंखें, सब जगह आंखें। और अपनी पत्नी को शाप दिया कि तुम पत्थर बन जाओ। तो ये लीला तो एक जगह पर है, बाद में प्रभु रामचंद्र ने उसके जो पत्थर बनी उसके पैर उस पर अपना चरण कमल रख के उसका उद्धार किया। अहिल्या उनकी पत्नी का नाम है गौतम ऋषि का, तो अहिल्या का उद्धार इस प्रकार से हुआ। तो ये रामायण की कथा है, लेकिन ये जब हो रहा था तो अंतर्धान जी देख रहे थे अपने देवता की शक्ति से, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसे प्रभुपाद जी लिखते हैं आगे कि इंद्र को हम तो इंद्र का अपराध नहीं करना चाहते, लेकिन प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इंद्र को ये भोग की वस्तुएं चुराने का और भोग लेने का और अपहरण करने का बहुत शौक है, ऐसे लिखते हैं प्रभुपाद जी। सत्य भी है, वास्तव में वो सब भगवान की लीला में सहयोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो इतने गिरे हुए हैं, लेकिन वो इतने नम्र है कि वो भगवान को कुछ शिक्षा दुनिया को देनी है तो वो उसके लिए पात्र बनने के लिए तैयार है। मतलब समझो आप ड्रामा कर रहे हो कोई, और ड्रामा में कोई चपरासी का भी रोल है, तो वो इतने नम्र है कि चपरासी भी बन सकते हैं, या और भी कोई गुलाम बन सकते हैं, कोई सेवक बन सकते हैं पानी देने वाला, और कोई राजा बन सकता है, कोई रानी बन सकती है। तो भगवान के जो ये बड़ा जो नाटिका भगवान प्रस्तुत करते हैं सब लोगों को शिक्षा देने के लिए, उपदेश करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, उसमें ये सारे देवता लोग अपना अपना रोल अदा करते हैं। कभी कभी उनकी बहुत निंदा होती है उसकी वजह से, शास्त्रों में भी उसका जिक्र होता है, वर्णन आता है, तो लोग समझते हैं कैसे लोग ये लेकिन वास्तव में भगवान के भक्त हैं। लेकिन फिर भी जो भी भगवान को उसमें से शिक्षा देनी है वो हमको समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो भगवान का जो उद्देश्य है सब आयोजन करने का वो फेल हो जाएगा। तो अंतर्धान ने इसको देखा ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन वो देख रहे हैं कि कर कौन रहा है, तो इंद्र कर रहे हैं, देवेंद्र देवाधिराज इंद्र कर रहे हैं। तो एक तो आदर के प्रति और एक थोड़ा बहुत क्या कहते हैं डर भी हो सकता है कि इतना बड़ा व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहे हैं तो मैं क्या करूं उसमें। और तीसरा ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं कि अगर कोई महान व्यक्ति जो भगवान का भक्त है और महान अधिकार में बैठा हुआ है तो कभी कभी उसके कुछ गलत कार्य को दुर्लक्ष भी करना चाहिए। ठीक है, सेवा कर रहा है तो कभी कभी हो जाता है। फिर ब्रह्मा जी एक भगवद्गीता के श्लोक का संदर्भ देते हैं, अपि चेतु दुराचारो, कि जैसे कोई महान भक्त जो है कभी अपराध करते हुए या कुछ करते हुए नजर आता है तो वो उसको दुर्लक्ष करना चाहिए, क्योंकि वो हृदय से प्रामाणिक है, उसके हाथ से गलती हो रही है, लेकिन वो सही अवस्था में है, सही स्थिति में है, इसलिए उसके अपराध को अपराध नहीं मानना चाहिए, क्योंकि भगवान तुरंत ही स्वयं उस भक्त के लिए जो प्रामाणिक है हृदय से उसको पवित्र शुद्ध कर देते हैं। ऐसे भी वर्णन रूपा जी का। तो इनमें से किसी भी कारण की वजह से उसने दुर्लक्ष किया, तो चूंकि उसने इस बात को देखते हुए भी दुर्लक्ष किया, कहते हैं इंद्र उनसे बड़े प्रसन्न हो गए कि भाई हमने कुछ चोरी किया और इन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, कंप्लेंट नहीं किया, शोर नहीं मचाया। तो इंद्र ने उसको अंतर्धान होने का शक्ति दे दिया कि तुम्हें भी ले लो ये अंतर्धान होने की शक्ति। कहने का तात्पर्य यह है कि एक तो चोरी, ऊपर से जो चोर भी चोरी में साथ दिया उसको भी अपना पक्ष में बना लिया। तो देवताओं का जीवन ऐसा होता है। अभी कितनी सारी कहानी आपके शास्त्र में आती है हमारी, कि यही इंद्र महाराज एक बार अप्सराओं का नृत्य देखने में इतने मशगूल हो गए थे, अपने ऐरावत पर बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। अभी अप्सराएं कोई दुनिया की, हमारे भारत की और विदेश की औरतें नहीं है। अप्सराएं वो औरतें हैं जिनके शरीर से खुशबू निकलती है, उनका सौंदर्य देखकर ऐसे संतजन कहते हैं कि अगर हम इस समय हमारे आज के चेतना की स्थिति में अगर किसी अप्सरा को देखते हैं तो हम लोग मर जाएंगे उसको देखकर, कामाग्नि से आवेश में आकर मृत्यु हो जाएगी हमारी। अगर हमको आज की स्थिति में हमारी जो वासना और जो हमारे विकार स्थिति में अगर हमको ऐसे ही स्वर्ग में लाकर रखा जाए तो भी हम तुरंत मर जाएंगे, वहां पर जाकर सहन नहीं कर पाएंगे, इतना सौंदर्य, इतना सुगंध, और वो भी कैसे, आपके शरीर से अलग सुगंध, मेरे शरीर से अलग सुगंध, बाकी सबसे अलग सुगंध, सत्संग हो जाएगा तो सुगंध ही सुगंध कोई दुर्गंध नहीं है, कोई पसीने का बदबू नहीं है, गटर के नाले नहीं है, गंदे नाले नहीं है, कोई टट्टी पेशाब नहीं है, सब जगह सुगंध, नंदन वन है, जो फूल खिलते हैं तो मुरझाते नहीं, खाली खिलते रहते हैं। इसलिए वो क्या होता है ना, जब भगवान कुछ लीला करते हैं तो ऊपर से पुष्प फेंकते रहते हैं, पुष्प वृष्टि करते रहते हैं, क्योंकि इतने प्रचुर मात्रा में पुष्प हैं और सत्कार के योग्य हैं किसी के, तो भगवान कुछ लीला करते हैं तो वेट करते हैं, जा के ऐसे वर्णन आता है कि जा के आते हैं, फिर बरसाते हैं, फिर जाते हैं, फिर और लेके आते हैं, फिर और बरसाते हैं। तो भगवान राजलीला करते हैं या कोई रावण को मारते हैं, जिस तरह से भगवान का जन्म होता है, उसका जन्मोत्सव होता है, नंदन वन है उनका, और क्या कहें, सोमरस है वहां पर, तो सोमरस से तो यहाँ पर तो शराब पीता है तो उसके सारे इंद्रिय शिथिल हो जाते हैं, बिल्कुल ऐसा बेकार हो जाता है, बात भी नहीं कर सकता है, चल भी नहीं सकता है, कोई सोच भी नहीं सकता है, सो जाता है बाद में, और दिन भर फिर सर दर्द में पड़ा रहता है तो वहां के सोमरस की शक्ति ऐसी कि वो सोमरस पीते ही इंद्रियों में हजारों गुना शक्ति पैदा होती है भोग करने की, वही इंद्रिय है। लेकिन एक अगर जलेबी खानी है तो उस जलेबी को हम हजार गुना और आनंद ले सकते हैं उस जलेबी का, क्योंकि इंद्रिय इतने पावरफुल बन जाते हैं उस सोमरस की वजह से। एनीवेज मैं थोड़ा सा वर्णन कर रहा हूं कि स्वर्ग में इतनी सुविधाएं हैं भोजन की, स्वाद की कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो विश्व वासु थे जगन्नाथपुरी में, जब वो जाते थे नील माधव की सेवा करने के लिए, तो उनकी सेवा के समय देवता लोग नीचे आकर नील माधव को सेवा करते थे, अपने लोगों से व्यंजन लाकर वहां पर भगवान को अर्पण करते थे, अपने लोगों से फूल मालाएं लाकर भगवान को अर्पण करते थे, अपने लोगों से जो पूजा के साधन है हाँ वहां से उनकी पूजा करते थे। तो ये विश्ववासु जब रात भर वहां रहकर सुबह आते थे घर पे, तो इनके शरीर में बहुत अद्भुत खुशबू आती थी और वो देवताओं के द्वारा भोग लगाया हुआ प्रसाद भी लेकर घर पे आते थे, तो खुशबू ही खुशबू, इतने दिव्य खुशबू कि दुनिया के किसी खुशबू से उसकी तुलना नहीं कर सकते हम। ऐसा वातावरण स्वर्ग में है, तो ऐसे वातावरण में वो भी सामान्य देवता नहीं, वो देवेंद्र के पोजिशन में है, ऐरावत पे बैठे हुए हैं, सब कुछ भव्य है और उसमें वो सुंदर अप्सराएं एक तो सुंदर हैं, सुगंधित हैं, ऊपर से श्रृंगार किए हुए हैं ना बेस्ट श्रृंगार राजा के आनंद के लिए, और ऊपर से नृत्य कर रहे हैं अपने शरीर को नृत्य में राजा के आनंद के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो राजा इतने मशगूल है, तो दुर्वासा मुनि वहां से आते हैं, वो कहां से आते हैं, वो वैकुंठ से आते हैं, भगवान विष्णु का दर्शन करके आते हैं। और जैसे हम लोग भी वृंदावन से मुंबई जाएंगे तो यहां से प्रसाद लेके जाएंगे ना, कोई वृंदावन का महाप्रसाद जाके वहां देंगे, तो वैसे ही ये वैकुंठ से भगवान विष्णु की महाप्रसादी माला को लेकर आते हैं, कहे कि मैं जा रहा हूं स्वर्ग लोक तो इंद्र को दूंगा उसका महाप्रसाद, तो वो इंद्र को अर्पण करते हैं। तो ये बेचारे इतने मशगूल हैं कि उसको ध्यान ही देते नहीं कि क्या मिल रहा है मुझे, कौन आया है सामने, क्या दे रहा है मुझे, पता ही नहीं। ऐसे लेते हैं और थोड़ा हाथी को दे देते, तो हाथी अपना हाथी है तो अरे स्वर्ग लोग क्या होगा, हाथी तो अपनी मती हाथी की होती है, अभी यहाँ से थोड़ी बेहतर होगी, लेकिन हाथी तो हाथी है। उसने क्या किया, उस माला को ऐसे ऐसे इधर उधर खेला और पैर में जाके कुचल दिया। सोच सकते हैं, अरे भगवान की माला वैकुंठ हो या स्वर्ग लोग हो या ब्रह्मा लोग हो या पृथ्वी या पाताल लोग, उसकी महिमा उतनी ही होती है, उस कम नहीं होती है। तो इतना भयंकर अपराध होने से दुर्वासा मुनि ने श्राप दिया उसको, ये सब आपका साम्राज्य, सब आपका ऐश्वर्य सब खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो फिर तुरंत राक्षसों ने आक्रमण किया और सब छीन लिया देवताओं का, सब देवता लोग अपना सिंहासन सब भूल के गुफाओं में छुपने लगे। महाबली प्रकट हो गए अपने, महाबली ने बहुत सुंदर संतों का और ब्राह्मणों का सेवा किया। तो ऐसे कई कथाएं हैं, अभी इसके आगे आप पढ़ेंगे ना, तो जब प्रचनी भरी का जन्म हुआ, जवान हो गए, तो एक सुंदर दिव्य कन्या का उनके लिए चयन किया गया कि उनकी पत्नी के रूप में हो जाए। अभी समारोह जब हुआ तो देख सकते हैं आप, इतना ऐश्वर्य है, इतना सब सुविधा है, तो शादी का समारोह भी कितना भव्य होगा उधर। ऐसा भव्य समारोह हो रहा है और वो जो पत्नी, इसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो प्रचनी भरी की जो होने वाली पत्नी नववधु है, उसके साथ फेरे लग रहे हैं और उसको देखकर जो प्रेक्षक गृह में अग्निदेव बैठे हैं वो मोहित हो जाते हैं उस सौंदर्य को देखकर। कई बार ऐसे देवता लोग आकर पृथ्वी लोग पर पृथ्वियों की जो सुंदरियां हैं उनके रूप को देखकर मोहित हो जाती है, उनको नष्ट कर देते हैं। राक्षस तो ऐसे है ही, लेकिन देवता लोग भी करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देवता लोग में बहुत प्रचुर मात्रा में माया है, बहुत प्रचुर मात्रा में। और जो भोगवादी है अगर वो वहां पहुंचता है तो वो पागल हो जाएगा इतने सब सुविधाओं को देखकर। और वो अवेलेबल है वहां पर ऐसे, तो वो कैसा है ना, भोग देश है। भोग देश का मतलब क्या होता है, वो भोग शरीर होता है, वहां पर केवल पुण्य कर्मों का जो फल है वो वहां प्राप्त होता है। और भोग शरीर जो है हमारे शरीर से अनंत गुना भोग लेने में शक्तिमान होते हैं, वही भोग जो हम याद रखना चाहते हैं वो वहां पर तो अनंत गुना उसको भोग सकते हैं, ऐसे इंद्रियों में शक्ति वहां पर उस भोग शरीर में होती है। बुढ़ापा और बीमारी बहुत बहुत ही होती जरूर है, लेकिन कम मात्रा में होती है, जन्म मृत्यु होता है। और पुण्य कर्म करके यहां से हम लोग वहां जाते हैं और वहां पर पुण्य का फल भोगते हैं, और एक एक भोग फल भोगते हैं, पुण्य क्षणे पुण्य पुण्य क्षीण हो जाते हैं, फिर दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ता है। तो इसलिए हमें यहां पर कोई कर्मकांड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहां पर कर्म करने चलेगी तो हमारी गति वहां पर हो जाएगी, तो वहां पर गति हो जाएगी तो वहां पर इतना सारा भोग है। ये भोग में कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्चुअली, एक दूसरे से देखा जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब हम भोग इतने प्रचुर मात्रा में इतने गहराई में वहां पर करते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट जो है स्वर्ग लोगों का वो ये है, भले आप देवताओं के संग भी रहेंगे जो भगवान के लिए अनुकूल है, भगवान के भक्त हैं, भगवान की योजना में काम करते हैं, भगवान के लिए काम करते हैं, फिर भी बीच में जो समय होता है ना वो बड़ा गड़बड़ वाला होता है। ऐसे ही देवताओं की सभा में एक बार गंगा जी आती हैं और शंतनु जी भी अपने देवता रूप में बैठे हुए हैं इंद्र की सभा में, और वायुदेव ऐसा चमत्कार करते हैं अपने पता नहीं किस भाव से वो गंगा देवी का ऊपर का जो पल्लू है उसको गिरा देते हैं हवा से, और वो भी उसको उठाकर वापस रखती नहीं है, और शंतनु जी देखते रहते हैं उनको काम वासना के वश। तो ये देवता की सभा का अपमान है, दोनों को शाप प्राप्त होता है। गंगा देवी को शाप होता है कि आपको पृथ्वी पर जाना होगा, संतनों को शाप मिलता है कि आपको भी पृथ्वी पर जाना होगा। तो गंगा जी को पृथ्वी पर आना पड़ा, संतनों को भी आना पड़ा, फिर उनका विवाह हुआ, फिर अष्टवसु को भी किसी जगह पर इसी उसको वो भी देखते रहे, तो उनको भी शाप मिला कि आपको भी पृथ्वी पर जाना होगा, जन्म लेना होगा, और जन्म लेके तुरंत गर्भवास होके जन्म लोगे तुरंत मर जाओगे वापस आओगे। तो गंगा देवी कहते चलो मैं भी जा रही हूँ और मैं तुम्हारे लोग की हूँ, कोई बात नहीं, मैं मेरा गर्भ आपको देती हूँ, आप मेरे गर्भवास करना और जन्म होते ही मैं आपको समाप्त कर दोबारा भेज दूंगी। कई प्रसंग ऐसे हैं, कई प्रसंग। इसलिए यहां पर जो भक्त नहीं है और बाकी श्रद्धालु है लेकिन भक्त भक्ति मार्ग में नहीं आए हैं, वो सब सोचते हैं कि यहाँ पर अच्छा कार्य करना चाहिए, यहाँ पर कुछ अग्निहोत्र करना चाहिए, कुछ पूजन करना चाहिए, कुछ धर्म का काम करना चाहिए, ताकि फिर उसके फल में हम लोग स्वर्गवासी बन जाए। तो क्या लिखते हैं, स्वर्गवासी पूज्य पिताश्री उनको लगता है स्वर्ग में जाना चाहिए, स्वर्ग में आए तो मतलब अपना लक्ष्य पूरा हो गया। लेकिन हम सबको ये जो भक्ति मार्ग में आए हैं हम सबको ये पता होना चाहिए कि स्वर्ग जो है वो हमारे लिए नहीं, ना हमको उसके लिए चाहना चाहिए, ना उस शरीर की अपेक्षा करनी चाहिए, ना उस सोमरस की, ना उस अप्सराओं की, ब्रह्मा उर्वशी मेनका की अपेक्षा करनी चाहिए। ऊपर से और एक बात स्वर्ग में होती है, स्वर्ग में जाने के बाद देखो इंद्र की अवस्था देखो, सारा ध्यान पृथ्वी पर लगा हुआ उसका, वहां पर भोग ले रहा है, लेकिन वो अपने अधिकार के पद से और अपने भोगों की जो सुविधाएं वहां उपलब्ध है उसमें इतना आसक्त है कि वो डर लगता है उसको कि कहीं कोई पृथ्वी पर ऐसी तपस्या ना कर ले कि वो इंद्र बन जाए। इसलिए वो बलि से बहुत डरते थे, क्योंकि बलि ने एक तो अपने ब्राह्मण सेवा के तेज से सब देवताओं को परास्त कर दिया और कब्जा कर लिया सबके ऊपर, ऊपर और सहयोग कर रहा है, क्यों, क्योंकि जबरदस्ती कब्जा किया मतलब सम्मान प्राप्त नहीं हुआ कि भाई तुम हमारे राजा हो, चलो देवता लोग दिल से उनको राजा नहीं मानते थे क्योंकि वो शत्रु थे उनके, अगर हृदय से वो इंद्रपद स्वीकार करे हाँ बलि महाराज तो उसके लिए वो सोयज्ञ कर रहे, और ये सोयज्ञ जब हो रहे हैं तो इंद्र बहुत परेशान है। कोई भी ऋषि मुनि यहां पर तपस्या करता है तो इंद्र बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि अगर उनकी तपस्या किसी एक हद के आगे चले गई तो वह इंद्रपद प्राप्त कर सकता है, तो उन्होंने भी बड़ी मेहनत से प्राप्त किया है। तो हमेशा एक चिंता बनी रहती है कि कोई मेरा यह पद छीन तो ना ले, तो ऐसे जीवन में क्या आनंद है बताइए आप, एंग्जाइटी कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी उसके अंदर, भोग भी लेना है, भोग के प्रति इतनी आसक्ति है कि मेरा भोग और कोई छीन न ले, मेरा पद कोई अधिकार कोई छीन न ले, मेरी सुविधाओं को और कोई छीन न ले, तो बार बार पृथ्वी पर नजर लगी रहती है। एक तो ऋषियों पर जो तपस्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि सत्संग किया जाए उनका भाई कौन तपस्या कर रहा है जाके उनके चरणों में बैठूं उनका उद्देश्य सुनूं, ये नहीं कि ताकि इसकी तपस्या आगे बढ़ेगी तो मुझे कुछ करना होगा, जब विश्वामित्र ने तपस्या किया तो क्या किया उन्होंने, पर परेशान हो गए वो, तो मेनका को भेज दिया। मतलब देखिए आप, जो मति भगवान के चिंतन में और सेवा में मग्न होनी चाहिए योजना के रूप में, विचार के रूप में, चिंतन के रूप में, वो मति किसमें एंगेज है, बार बार अस्थिरता जो है हा? असुविधा अस्थिरता जो है उसमें लगी हुई है, उसी स्तर पर है वो, एक जगह पर भी स्थिर नहीं है, कभी चिंता है, कभी भोग वासना है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी द्वेष है। तो ऐसी अवस्था में हम क्यों जाना चाहते हैं उधर, वाई शुड वी गो देयर? हमारा जो मार्ग है वो भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में केवल भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य किया जाता है। सम सिद्धिर हरि तोषणम, श्रीमद् भागवतम केवल शुद्ध भक्ति के मार्ग को प्रचार करता है। अमलम पुराणम, इसमें कोई सत्व गुण रजोगुण तमगुण कोई प्राप्ति कोई स्वर्गलोकवास किसी की वर्णन किसी का उपदेश इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर केवल वो चीज है, वो केवल दिखाता है आपको, देखो ये ऐसा करने से इनका ऐसी अवस्था हो रही है, आप इसमें मत जाना। वर्णन भी आता है तो इसके लिए आता है केवल कि हमें इस पे नहीं जाना है, इस महाजन के पद चिन्हों पर हमको नहीं चलना है। हमें केवल सुखदेव जी, नारद जी, परीक्षित महाराज, अम्बरीश महाराज, पांडव, इनके चरण कमलों पर चलना है, इसलिए भागवत दिया गया। बाकी सारे जितने भी शास्त्र हैं, तीन विभाग में शास्त्र हैं। एक विभाग जो है वो तमोगुण के लोगों को रजोगुण में लाने का प्रयास करता है, एक हिस्सा है। बहुत सारे अघोरी कृत्य हुई कर्म भी दे रही है उसके अंदर, ताकि वो वहां से उठकर रजोगुण में आ जाए। फिर कुछ शास्त्र ऐसे जो रजोगुण में है और रजोगुण से वो सत्वगुण में उस व्यक्ति को ला सकता है। जैसे कि जो भोग वाला लालसा है, जिसकी ये चाहिए मुझे, वो चाहिए मुझे, ये पद चाहिए, सुंदरता चाहिए, आरोग्य चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए, ये सारी जो दुनियादारी की इच्छाएं हैं, खराब नहीं है, मतलब किसी के लिए हानिकारक नहीं है, खुद के लिए चाहिए सब भोग, तो उन लोगों को वो सत्वगुण में स्थित कर देता है। फिर कुछ शास्त्र जो है वो सत्वगुण वाले लोगों को सत्वगुण से दिव्य गुण में, विशुद्ध सत्वगुण में ला के रखता है। और फिर विशुद्ध सत्वगुण में श्रीमद् भागवत है, भक्ति रसामृत सिंधु है, भगवद गीता है, ईशोपनिषद है। और फिर आचार्यों ने इन पर जो टिप्पणियां की है वो ऋषिजीव गोस्वामी ने संदर्भ लिखे हैं, और बहुत सारे ग्रंथ हमारे गोसाई लोगों ने लिखी है, तो वो सब दिव्य गुण में है। उसका अध्ययन करने से हमारे हृदय में जो भोग लालसा है पृथ्वी की या तो स्वर्ग लोगों की, वो नष्ट हो जाती है। ये जो हमने अभी आज श्लोक पढ़ा, पावकः पवमानश्च, ऐसे केवल श्लोकों का पठन करने से भी हृदय शुद्धि होती है। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जो भी हमारे हृदय में अभद्र है वो सब नष्ट हो जाता है। हमको इस बात पर श्रद्धा होनी चाहिए, हाँ ये जो भागवत का रोज का पढ़ने का जो विधि प्रभुपाद जी ने हमारे इस्कॉन मंदिरों में विश्व भर में स्थापित किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, हमारे अंग है हमारे भक्ति का। रूप गोस्वामी ने जो 64 अंग दिए हैं उसमें से एक अंग यह है। और रोज नित्य रूप से, नित्यम भागवत सेवा, नित्य रूप से इसका सेवन करने से वो सारे जो डेंजरस अवस्थाओं में हम जा सकते हैं उन अवस्थाओं से ये हमें बचाता है, जिसमें हम अपने क्या कहते हैं उसको, नेचुरली स्वाभाविक दृष्टि से हमारा जो भाव है उसके स्वाभाविक दृष्टि से जा सकते हैं उन अवस्थाओं में, उन अवस्थाओं से हमको बचाता है ये श्रीमद् भागवत। इसलिए चाहे कोई भी बोलने वाला हो, कोई भी वक्ता हो, कोई भी अध्याय चल रहा हो जो हमें इतना पसंद नहीं है, हाँ हो सकता है, क्योंकि अभी कभी कभी इतना डिफिकल्ट सिद्धांतिक बातें इसमें आती है, निर्माण कैसे भगवान ने किया, अभी ये जो कई श्लोक है, किसका बेटा कौन है, किसकी पत्नी कौन है, फिर किसका बेटा कौन हो गया, ऐसे बहुत सारा वर्णन आता है, लेकिन सब एक लिंक है पूरी जो आपको किसी एक नतीजे पर पहुंचा रही है, किसी एक दिव्य उपदेश के तहत पहुंचा रही है। इसलिए उसको सावधानी से और पेशेंस या संयम के साथ में सुनते रहना चाहिए। और अगर आपको उसमें ज्यादा कुछ दिव्यता का अनुभव भी नहीं हो रहा है, लेकिन क्योंकि सुखदेव से मुख से उसका वर्णन हो रहा है वही काफी है। एक तोते ने किसी अमरूद को अपना चोंच लगा दिया है वही काफी है उस पीठे को फल को मीठा करने के लिए। हम ये भी जानते हैं सत्य है, कोई पेड़ में अमरूद लगा है, अगर कोई तोते ने उसको चोंच लगा दी है तो बहुत मधुर हो जाता है, प्रकृति का नियम है। उसी प्रकार से सुखदेव जो लीला सुख है, राधा रानी के तोता है, वो सुख है, उनके मुख से ये जो अमृत प्रकट होता है, तो चाहे आपको बोरिंग लगता होगा फिर भी वो आपके लिए, आपके आत्मा के लिए अमृत है। आपके भौतिक कानों के लिए वो लगता होगा कितना बोरिंग है, लेकिन आत्मा के लिए वो अमृत है। जो आत्मा को अमृत अमृत सिंचन होता है आत्मा के ऊपर, तो जो विकार लगे हुए आत्मा के ऊपर वो नष्ट हो जाते हैं। अभी ये तो देवताओं की बात है, हम लोग तो यहां बैठे हुए, अभी तो यहां पर क्या किया जाए, यहां पर भी इंद्र जैसी पोजीशन हमको धीरे धीरे मिलने लगती है। जैसे हम अच्छे कर्म करते हैं तो धन आता है, तो उसके बाद में अधिकार आता है, सम्मान आता है, सम्मान उसके बाद में अधिकार आता है, उसके बाद में ऐश्वर्य आता है, फिर विद्या प्राप्त होती है, फिर विद्या से भी एक बल प्राप्त होता है। आप कितने भी कुरूप रहेंगे लेकिन आप बड़े विद्वान होंगे तो लोग बड़े आदर से आपको देखते हैं कि कितनी इतना ज्ञान है इनके ऊपर, बल है किसी के हाथ में शरीर में। तो ये सारी चीजें एक प्रकार से हमको छोटा मोटा इंद्र बना देती। फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग सोचते हैं कि ये सब के होने की वजह से ये जो भी कुछ मेरे अधिकार में है वो मेरा है, मैं इसका स्वामी हूं, अहम भोगी, अहम ईश्वरो अहम भोगी। और फिर जो इंद्र का हाल है वो हमारा यहां होना आरंभ हो जाता है। हमारा केवल एक ही काम होना चाहिए, वो है किसी भी चक्र में ना फंसते हुए केवल एक सीधा रास्ता जो है भक्ति भगवान का करने का, सेवा का मार्ग जो है उसी को चल के हम पकड़ के हमको चलना चाहिए। एक ही रास्ता है सबसे बचने का, वो है भक्तों की और भगवान की सेवा। और भगवान भी बड़े दूर है हमसे अभी तक, तो भगवान तो बहुत दूर है, उनकी अनुभूति होना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगवान ने उनकी अनुभूति देने के लिए हमको उनके भक्त दिए हैं जो हमारे आसपास जोड़ते रहते हैं, जो उनको भजते हैं, उनको पूछते हैं, और उनका भजन करने से देवताओं के और विष्णु के भी गुण उन भक्तों के अंदर धीरे धीरे प्रकट होने लगते हैं। और क्योंकि उनके हृदय में प्रामाणिकता होती है, कोई छल कपट नहीं होता, कितना भी कुछ भी रहेगा वो छल कपट मतलब द्वेष रहेगा, झगड़ा होगा, वाद विवाद होगा, फिर भी अगर हमारी मृत्यु हो गई या संकट आ गया तो भक्ति हमको सरल हृदय से, निष्पाप हृदय से, निरपेक्ष भावना से हमारी सेवा कर सकते हैं। जब कोई भक्तों में तंटा होता है तो हम इसी बात को दोहराते हैं, क्या आपको लगता है इनसे आपका झगड़ा हुआ है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये भक्त अगर मृत्यु की शैया पर होंगे, अगर वो वहां खड़े होंगे तो आपके कान में भगवान का नाम का जप करेंगे? हाँ भाई, ये बात तो सही है, मुझे इस बात का तो विश्वास है कि हमारी पट्टी नहीं है, लेकिन अगर मैं मृत्यु शैया पर होऊंगा और ये व्यक्ति आसपास में होंगे तो दौड़ के आके मेरे कान में भगवान का नाम का उच्चारण करेंगे, मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, तो फिर छोड़ दो झगड़ा आप। क्योंकि ऐसा कार्य जो है वो केवल एक भक्ति कर सकता है। हमारा आपका जीवन काल में कितना भी वाद विवाद होगा, लेकिन अगर कोई भी वाद विवाद हमारा शत्रु भी जिसको हम मानते समझो, वो भी अगर संकट में है या कोई परेशानी में है तो भक्त लोग भाग के जाते हैं, और जाना भी चाहिए। तो ऐसे भक्तों के माध्यम से भगवान उनकी प्रत्यक्ष अनुभूति देने के पहले अपनी अनुभूति उनके माध्यम से हमको देते रहते हैं। तो हमारा एक ही उद्देश्य रहना चाहिए, जो हमारी सेवा है उसको बनाए रखना चाहिए किसी भी स्थिति में। क्योंकि हमारा जब भी कभी होता है तो हमको नींद आ जाती है, हमारे मन में विकल्प आते हैं, यहां वहां की वासनाएं मन में आ जाती है, उसी समय आ जाती है। और कभी नियम पालन में भी हम लोग इतना नहीं कठोर होते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है। लेकिन सेवा एक ऐसा माध्यम है कि सेवा में आत्मा के साथ बुद्धि, मन और इंद्रियां सारे लग जाते हैं। इसलिए आपको कथा में बैठकर एक बार नींद आ सकती है, लेकिन अगर रसोई में आप भगवान के लिए भोजन बना रहे हो तो आप सो नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि, आपका मन, आपकी भावना, आपकी सारी इंद्रियां एक साथ लगी हुई है। अरे बहुत सारा थक गया है तो रसोई में भी सो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन आम तौर पे हाँ, अगर आप थके नहीं हो, अगर आप तो वैसे बैठ के सोने की आदत है, लेकिन अगर आप कुछ सब्जी काट रहे हो तो आपको नींद नहीं आ सकती, आ जाते ना, क्या करे, अभी कलियुग इतना आगे बढ़ गया है, हाँ इतना आगे बढ़ गया है, तो ऊपर से ठंड भी पड़ रही है, हाँ इतना शरीर संकुचित हो रहा है, इंद्रिया वो चलती नहीं है, सुबह ब्रश करने के लिए कोई उंगलियां ही नहीं चलती है। अब ऐसे माहौल में एक तो दुर्मति मति भी शुद्ध नहीं है, तो ये सब जो नहीं दिखने चाहिए वो परिणाम हमारे शरीर में दिखने लगते हैं। लेकिन फिर भी अभी ऐसे ठंड में अगर आपको बोलेंगे कि आप अभी जपा करो तो वो हाथ भी नहीं लगा रहे, हरे कृष्ण कठिन होता है बहुत, बहुत तपस्या, निश्चय और शक्ति उसमें डालनी पड़ती है, रात से सोचना पड़ता है उसके बारे में। लेकिन उससे भी हमको अगर अपने को, वैसे हमारे मेडिकल में कैसे कहते हैं कि वो होता है ना टीका, वो टीका हम देते किसी को, और अगर वो मलेरिया का टीका दे दिया समझो उसको, तो मलेरिया जहां पर प्रचुर मात्रा में अभी चल रहा है वहां पर भी वो घूमेगा तो उसको मलेरिया नहीं होता है, क्योंकि वो टीका उसके शरीर में फैल रहा है, वो किधर भी मलेरिया काटे, मच्छर काटेगा फिर भी उसको वो पकड़ेगा नहीं, रोग नहीं होगा उसको, वो दवाई उसके अंदर जो घूम रही है उसको काट देगी। तो वो हमको टीका जो है ना भौतिकता से बचने का, वो है भगवान के भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा। इसमें अगर कोई प्रामाणिकता से लगा हुआ है ना, तो उसको माया का रोग जो है, भवरे जो है, वो छूता नहीं है, और जो है अंदर वो उसको साफ भी कर देता है। तो इंद्रिया हमारी वो रूप गोस्वामी जी बताते हैं कि जब हम साधना से अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं और उन इंद्रियों के द्वारा शुद्ध होने की प्रक्रिया हो रही है, उससे समय साथ साथ में उन इंद्रियों को भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में भी लगाते हैं, भगवान के सेवक भक्तों की सेवा में लगाते हैं, तो माया निश्चित रूप से नष्ट हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए ये न के न प्रकार है, हमेशा हर समय हमारे बुद्धि मन और इंद्रियों को प्रत्यक्ष रूप से हमको भगवान के भक्तों की और भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा में लगाए रखना चाहिए। ये हमारे लिए एक ऐसी दवा है जिससे हम हर समय, हर स्थिति में, हर अवस्था में, हर जगह माया के प्रभाव से बच सकते हैं। जिसका कॉन्टैक्ट सेवा के माध्यम से बना हुआ है भगवान से, उस व्यक्ति को माया छू नहीं सकती है। सेवा छूट गई तो माया आपको पकड़ लेगी। हाँ, कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करी, एक बार कृष्ण को भूल गए, उनका संपर्क टूट गया, सेवा खत्म हो गई, तो भोगवांछा आ जाती है। भगवान जाने से निकटस्थ माया दरे झपटिया धरे, तुरंत पकड़ लेते हैं। और ये वृंदावन धाम है, यहाँ पर सब कुछ तीव्र होता है, एवरीथिंग इज वेरी इंटेंस हियर। यहाँ पर कृष्ण की भावना भी बहुत तीव्र है, ये धाम भी बहुत तीव्र है। हाँ, आपको जो अनुभूतियां मुंबई में या दिल्ली में ऐसे प्राप्त हो सकती है, उससे हजारों लक्ष गुना तेजी से वो अनुभूतियां वृंदावन में प्राप्त हो सकती है। भगवान का धाम है ये, भगवान से अभिन्न है, लेकिन साथ साथ माया भी उतनी शक्ति में यहाँ प्रभावित है। कंस भी बेचारा यही था, हरिष्का सुर भी यही था, उतना भी यही थी, सब लोग यहीं पर थे और यहीं पर आते थे, और भगवान के होते हुए भी इनका आतंक भक्तों को सहना पड़ा कि नहीं, बताओ कौन थे। इतना लाइफ यहाँ का डिफिकल्ट था, भगवान सामने है आपके, फिर भी वर्षा हो रही है, भगवान सामने, हरिष्का सुर आके भूकंप हो रहा है, युवतियों के गर्भपात हो रहे हैं, इतना भयंकर संकट भगवान के होते हुए यहां पर है। इसका मतलब ये नहीं कि श्री वृंदावन धाम में आएंगे तो कोई कष्ट नहीं होगा, कोई समस्या नहीं होगी, सब सारे समाधान हल हो जाएंगे। ये हल हो जाएंगे, दिव्य स्तर पर हो जाएंगे, शरीर के स्तर पर, सामाजिक स्तर पर कष्ट आते रहेंगे, परेशानियां जितनी बंबई में है उतने कई गुना यहां पर आएगी, और वो सूक्ष्म रूप में भी आएगी, शरीर के स्तर पर आएंगी, मन के स्तर पर आएंगी, आत्मा के सर पर भी आएगी, और आपको बहुत परेशान करेगी। उससे बचना है अगर, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि अगर आपको समझो किसी व्यक्ति को भक्ति में गिर जाना है, समझो पतन होना है उसका, तो बोलते हैं उसके लिए वृंदावन बहुत बेस्ट जगह है, क्योंकि इतनी प्रचुर मात्रा में यहां पर माया है। अगर भगवान के चरण कसके नहीं पकड़े सेवा के माध्यम से, उनके भक्तों की सेवा के माध्यम से, तो माया आपको छोड़ेगी नहीं यहां, क्योंकि वही ऐसा व्यवस्था ही ऐसी है। लेकिन अगर यहां पर, अगर हमने यहां पर आकर अगर भक्तों का सेवा और भगवान का सेवा अच्छी तरह से किया, तो हजारों लक्ष गुना हम प्रगति करेंगे, जितना बाहर नहीं कर सकते। और वो करते हुए कोई अपराध कर दिया आपने, तो मुंबई और दिल्ली के हजारों लाखों गुना हमको यहां पर उसका अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसलिए उसको तीव्र भूमि कहते हैं, तीव्र इंटेंस प्लेस। यहां पर चक्की जो पिसती है ना, वो बहुत ही भयंकर पिसती है, कोई बचता नहीं उससे। लेकिन जो प्रामाणिक व्यक्ति है, जो निश्चय पूर्वक यहां पर आया हुआ है, इसको पता है इस सब चीज का, और वो तैयार है उस सब के लिए, वो तो ऐसे फास्ट ट्रेन से प्रगति करेगा भगवान की, वो बहुत ही जल्द। इसलिए मे भी वहां पर हमको बंबई में बाकी सब चीजों से स्थूल शरीर, स्थूल स्तर पे संघर्ष करना होगा, यहां पर बड़े सूक्ष्म स्तर पर हमको संघर्ष करना होता है। बार बार आत्मा को बोलना, अपने आप को बोलना पड़ता है कि हम लोग यहां पर क्यों है, व्हाई वी आर हियर। कोई कर्मकांड हमारे हाथ से नहीं होना चाहिए, हो सकता है हमारी दुर्मति की वजह से जो भक्ति की क्रिया है उसको हम कर्मकांड की क्रिया में रूपांतरित कर सकते हैं, है ना, इज इट नॉट पॉसिबल। हमारी चेतना की वजह से जो दिव्य क्रिया, दिव्य सेवा हमको प्राप्त हुई है, उसको हम भौतिक स्तर पर ला सकते हैं, कर्मकांड के स्तर पर, लाभ हानि के स्तर पर ला सकते हैं। वही सेवा जो भगवान की अनुभूति आपको करा सकती है, वो आप लाभ हानि के स्तर पर अपनी दुर्मति से ला सकते हैं। तो यहां पर बार बार किसको प्रचार करना है, हमारे आत्मा को प्रचार करना है, यहां पर हम लोग क्यों हैं। तो ये समझना है कि ये सब शास्त्र हम पढ़ते हैं तो हमको चेतावनी है, भाई साहब इंद्र बनने का प्रयास मत करो, भाई साहब देवता बनने का प्रयास मत करो, बहन जी अप्सरा बनने का प्रयास मत करो। क्यों? क्योंकि ये सब डेंजरस है बहुत। आज भी यहां बैठे बैठे अगर मुझे देवता का जन्म प्राप्त होता है तो मेरी मति पूरी चेंज हो जाएगी, क्योंकि हमारी मति पर हमारे शरीर का और हमारे बाह्य स्थिति का बहुत ज्यादा परिणाम होता है। हम उसको टाल नहीं सकते, वी हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट, ये सत्य है। हम इतने अभी विरक्त नहीं है, इतने भी शरीर से जुदा नहीं है कि शरीर कैसा भी हो हम तो भगवान में लीन है, ऐसा नहीं कह सकते। इतना शरीर का, अरे बुढ़े शरीर का भी प्रभाव होता है। जैसे बुढ़ा, अगर हम पुरुष बुढ़ा हो गया तो हमको हम बुढ़े पुरुष अपने मानते हैं, और स्त्री अगर बुढ़ी हो गई तो वो मैं बुढ़ी हूं ऐसे बोलते हैं। यहां तक हमारा अटैचमेंट है। तो ये अलग अलग स्तर पर संघर्ष करने के बदले में एक ही सेवा में अगर अपने आप को लीन रखेंगे, और सेवा कैसे, नम्रता और कृतज्ञ भाव से करते रहेंगे, तो ये सारे जो डेंजरस चेतावनियां हैं उससे हम बच जाएंगे। वृंदावन धाम इतना दयालु है क्योंकि स्वयं कृष्ण है, वो स्वयं बलराम जी अपने आपको विस्तारित कर चुके हैं। तो दिव्यता से ऑलरेडी हम संपर्क में हैं। ये भूमि जिस पर हम चल रहे हैं उसमें ऑलरेडी हमको शक्ति प्राप्त हो रही है। यहाँ पर केवल होने से, यहाँ पर सोने से, यहाँ पर केवल होने से, यहाँ पर प्रसाद पाने से, यहाँ पर जल पान करने से, यहाँ पर हवा लेने से, हर जगह चारों तरफ से हमको दशों दिशाओं में से श्री कृष्ण का संग प्राप्त हो रहा है। लेकिन अगर कसके उनके साथ संपर्क बनाना है तो हमको सेवा में लगना चाहिए। बार बार अपने आपको याद करना चाहिए, किसी भी कीमत पर हमारी दी गई सेवा को, हमको जो दी गई है उसको कर्मकांड के रूप में रूपांतरित नहीं करना है। मुझे क्या मिलेगा उस करने से, मैंने क्या इतना साल सेवा किया, क्या मिला मुझे, ऐसे भाव नहीं आना चाहिए उसके अंदर। क्योंकि आपकी सारी सेवा अक्षय खाते में जमा हो रही है। जब आप वो सेवा करने करने के बाद पूछते हो मुझे क्या मिला, तो अक्षय खाते से निकल कर वो कर्मकांड खाते में आ जाती है। नुकसान किसका हो रहा है? वृंदावन में सेवा कर तो आप कर ही रहे हो, कर मौका भी मिला आपको, लेकिन अपनी मूर्खता से वो अक्षय खाते का दर्जा छोड़कर वो कर्मकांड के दर्जे में हम खुद को ला रहे हैं। तो हम हमारे भक्ति वेदांत अस्पताल में हमारे लोगों को बताते हैं कि आप अपनी नौकरी जो है उसको सेवा में रूपांतरित करो। नौकरी तो है ही, काम करना ही है, पगार मिल रहा है आपको, ड्यूटी आपका दिया है, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन भक्ति वेदांत अस्पताल में आप अपनी नौकरी को सेवा में रूपांतरित करो यहां पर काम करके। और जो सेवा कर रहे हैं उनको कहते हैं नौकरी मत करो, मतलब अपनी सेवा को नौकरी के रूप में मत लाओ, डोंट मेक इट अ जॉब। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है ना कि लोग अपनी सेवा को भी जॉब बना देते हैं। बीइंग अ डिवोटी इज माय जॉब, तो मुझे डिवोटी के रूप में यहां पर नौकरी दिया गया है तो डिवोटी बने रहना ये मेरा जॉब है। अगर मैं नहीं ऐसा करूंगा तो जॉब चला जाएगा, मेरा पोजीशन भी चली जाएगी, जॉब भी चला जाएगा। तो किसी भी कार्य को एक कैलकुलेशन गणितीय रूप में यहां पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि नुकसान हमारा ही है उसके अंदर। हम यहां पर ठाकुर की नौकरी करने आए, जिस नौकरी की कोई तनख्वाह नहीं होती है, एक ही प्राप्ति है कृपा उनकी और उनका संग, उसके लिए हम लोग यहां पर आए। और ये चेतना अगर हम बंबई में अपनाएंगे तो बंबई भी वृंदावन है, ये चेतना दिल्ली में अपनाएंगे तो दिल्ली भी वृंदावन बन जाता है आपके लिए। तो अल्टीमेटली ये सब खेल जो है चेतना का खेल है। प्रभुपाद जी ने भी कहा कि अल्टीमेटली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो चेतना का परिवर्तन है। जब तक चेतना में परिवर्तन नहीं है तो आप गुस्साए भी बनोगे, आप कोई अधिकारी मठाधीश भी बनोगे और सोचते रहोगे कि अरे कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ प्राप्ति नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो वो पोजीशन भी बेकार है आपके लिए। वो पोजीशन आपको इतनी सहायता कर सकता है कि आप भगवान के और नजदीक जा सकते हो अपनी सेवा के माध्यम से, लेकिन वो पोजीशन में बैठकर आप सोचोगे कि क्या मिल रहा है, बाकी लोगों को कितना मिल रहा है, हमको क्या मिल रहा है, तो वो पोजीशन भी बेकार है। भगवान की सेवा में आने के बाद में हमको संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए। संतुष्ट होना बहुत मुश्किल है भौतिक दुनिया में, लेकिन फिर भी शास्त्र का उपदेश सुनते हुए हमको संतुष्ट होने का प्रयास करना चाहिए कि जो भी है वो हमारे लिए भगवान ने दिया हुआ परिपूर्ण है। हमारे लिए आज जो वातावरण निर्माण किया गया है, जिनका जिनका संग प्राप्त हो रहा है, जो भी सेवा प्राप्त हो रही है, जो भी स्थिति में हो रही है, वो हमारे आज की स्थिति में हमारी उन्नति के लिए परिपूर्ण व्यवस्था भगवान ने की है। इतनी श्रद्धा हर भक्त को होनी चाहिए। ऐसा कहते हैं कि जब आप भगवान ने आपको दी हुई जो व्यवस्था है आज की, उसको आप परिपूर्ण मानते हैं तो आपको भगवान की आज की लीला में प्रवेश मिलता है, क्योंकि आज का भी जो भी हो रहा है भगवान की लीला ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। हम उसको देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते हैं, लेकिन जो भी हो रहा है भगवान की योजना है, भगवान की दिव्य योजना में सब कार्य हो रहा है। जब आप उसको परिपूर्ण समझते हैं अपने अंदर से भाव से, तो आप भगवान की लीला में प्रवेशित है ऑलरेडी। जब भी यहां पर जी रहे फिर भी आप भगवान की लीला में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि भगवान का सारा योजना ही प्रचार यंत्रणा जो है, चैतन्य महाप्रभु की योजना जो है, ये सब इनकी दिव्य संकीर्तन लीला है जिसमें हम लोग सहभाग लेने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्या नहीं है, ऐसे रो रहे हैं हम सब लोग बैठ के, ये नहीं है वो नहीं है, इधर ये नहीं है वो नहीं है, तो फिर उससे हम उतना डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। और जितना स्वीकार करते हैं इस चीजों को परिपूर्णता के स्तर पर, उतना हम भगवान की लीला में प्रवेश कर रहे हैं। तो हर स्थिति में हमको भगवान के साथ भगवान की योजना में जुड़े रहने का भाग्य यहां पर हो, वृंदावन में या मुंबई दिल्ली में हो, प्राप्त है। क्योंकि हमारा जो मूवमेंट है, आंदोलन, ये चेतना का आंदोलन है, ये कोई हाथ पैर का आंदोलन नहीं है, कोई मन का आंदोलन नहीं है। मन का आंदोलन वो योगासन वगैरह योग मन के लिए करते हैं, उसको काबू में लाने के लिए। हमारा आंदोलन जो है वो आत्मा की शुद्धि का और भगवान की सेवा का, आत्मस्तर का आंदोलन है, चेतना परिवर्तन का आंदोलन है। और जब चेतना परिवर्तन होता है, अपने आप बुद्धि परिवर्तन, मन परिवर्तन, सब परिवर्तन, इच्छा परिवर्तन और इंद्रिय शुद्धि हो जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आइए हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें, क्योंकि ये सब बातें कहना आसान है लेकिन भगवान से प्रार्थना करने से ये और आसान हो जाती है। मतलब प्रैक्टिकल स्तर पे, प्रत्यक्ष रूप में उसको अमल करने में वो आसान होगी जब हम समझेंगे और श्याम सुंदर जी को, कृष्ण बलराम जी को प्रार्थना करेंगे कि हमें ऐसा होना है, हमें ऐसा रहना है। हमको जो इतना अनंत पुण्यों की वजह से, पिछले जन्मों की वजह से जो वृंदावन वास मिला है, किसी को कुछ दिन मिला है, किसी को कुछ घंटे मिला है, किसी को परमंड यहाँ शिफ्ट हो गए, किसी का जन्म यहाँ पर हुआ है, ये बहुत बड़े पुण्य की प्राप्ति है। तो इसके हम प्राप्त होने के बाद उसकी महिमा को भूले नहीं, क्या शक्ति इसके अंदर है, क्या अपॉर्चुनिटीज, क्या मौके इसके अंदर उपलब्ध है, उसको भूलना नहीं चाहिए। ऐसा अगर हम रहेंगे तो हम जहां पर भी रहेंगे, जैसे प्रभुपाद जी जहां पर भी गए वृंदावन को हृदय में साथ लेकर गए, उनके संग में जो भी आए उन सब लोगों ने वृंदावन के ही वातावरण का अनुभव किया उनके माध्यम से। तो हम और आप भी श्री प्रभुपाद जी के चरण चिन्हों पर चल सकते हैं और थोड़ा बहुत अनुभूति लोगों को दे सकते हैं। अगर हम उस चेतना में है तो हमको सब जगह पर ही ऐसी दिव्य अनुभूति मिल सकती है। तो मेरे आपको विनती है, मैं भी अपने आप में प्रयास कर रहा हूं कि मेरी सेवा को मैं एक नौकरी और जॉब ना बना दूं। तो मुझे सेवा मिली है ऑलरेडी गुरु जी के माध्यम से, वो सेवा नौकरी जो है उसको मुझे सेवा के रूप में परिवर्तित करना चाहिए, केवल सबसिद्ध हरिदोषनम के रूप में करना चाहिए। और बाकी जो हमको मिलना है वो कर्मों की वजह से मिल ही रहा है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। भाग्य से जो मिलता है उसको कोई रोक नहीं सकता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का?
Yes. आपने कथा के दौरान बताया था कि शांतनु महाराज और माता गंगा उसके जाता 8 वसु जो देख रहे हैं हम सबको श्राप मिला वो धरती पे आ गए। कथा के दौरान आपने बताया था
8 पुत्र, क्या बोला आपने?
8 वसु जो थे
हाँ,
श्राप मिला वो धरती पे आ गए।
हाँ,
तो सबने एक जैसा ही अपराध किया था, तो भीष्म पितामह ने क्या विशेष किया जो उनको इतना दिन रुकना पड़ा?
उनको विशेष सेवा थी जिसलिए उनको रोका गया। जो सेवा उन्होंने किया, अगर आपको चरित्र पढ़ेंगे उनका, वो सेवा उस समय पृथ्वी पर और कोई कर नहीं सकता था। हम उनको कथा को भी, आप तो अभी कलयुग में बैठे हैं, द्वापर युग में जो स्थिति अलग होगी, उस स्थिति में भी इतने दिव्य महान लोग वहां पर थे, लेकिन उसमें भी ये जो थे, ये इन्होंने जो सेवा किया है वो बहुत प्रधान सेवा है। तो भगवान जो है ना, वो जो शरणागत जीव होते हैं ना, उनको ऐसे शाप वाप के माध्यम से उनसे बड़ी बड़ी सेवाएं करवाते हैं, तो उनको इसलिए रखा गया है। एक पूरा विश्व को एक उपदेश, एक त्याग में जीवन, एक आदर्श जीवन, एक महाजन का जीवन विष्णुदेव के माध्यम से भगवान ने, यहां तक कि जो खुद युधिष्ठिर को उपदेश कर सकते थे, युधिष्ठिर बहुत दुखी थे युद्ध होने के बाद, वो उपदेश उन्होंने उनके मुख से करवाया और उनकी और महानता एंड में भी प्रकट करवाई कि ये कितने महान जीव थे। हरे कृष्णा। और कोई जिज्ञासा है किसकी? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ही है, 100% है। भगवान के नाम का जप जो है सबसे प्रधान सेवा है, भक्तों की भी भगवान की भी। वो हमारी अन्य सेवाओं की चेतनाओं को बनाती है, द प्रोसेस टू क्रिएट द रिक्वायर्ड कॉन्शियसनेस फॉर द फर्दर सर्विस दैट वी डू। तो ये तो प्रधान सेवा है, मूल सेवा है। ये करेंगे ठीक से तो बाकी सेवाएं ठीक हो जाएगी। बिल्कुल सेवा है वैष्णव। अगर अगर कोई व्यक्ति समझो एक तरह से भक्त नहीं है समझो, लेकिन आप उनको भगवान के अंश के रूप में देखते हैं और सेवा करते हैं तो भी वैष्णव सेवा है। तो फिर हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये भक्त नहीं, इसकी सेवा नहीं करता, वो उसकी सेवा करता, वो भक्त है, तो भेदभाव हो गया ना उसके अंदर। लेकिन उच्च स्तर की सेवा ऐसी होती है कि वो जीव दया का मतलब क्या होता है, वो जीव दया जब होती है तो जीव सब लोग भक्त नहीं होते ना, जीव सब लोग पतित होते हैं, उनकी सेवा करते हैं। क्योंकि हम उन जीवों के अंदर भी उत्तम अधिकारी अवस्था में भी या शास्त्र पढ़कर हम देखते हैं कि उसमें भी वही भगवान है जो हमारे और तुम्हारे अंदर है, और वो देखकर जब करते हैं तो वो सेवा वैष्णव से हो जाती है। ये सोचकर नहीं करना चाहिए अरे ये तो गरीब है, ये तो फटीचर आदमी है, ये तो कंगाल है बेचारा, मैं उसकी सेवा कर सकता हूँ, मैं अधिकारी हूँ, मैं सेवा कर सकता हूँ, ये भाव से करेंगे तो आपका अहंकार बढ़ेगा। लेकिन आप सोचेंगे ये भगवान का अंश है, पता नहीं किस रूप में भगवान मेरे साथ सामने आ रहे हैं, तो मैं उनकी उस रूप में सेवा करोगे। तो हमको बताया जाता है हमेशा गुरु जी के द्वारा कि आपको अपने मरीज को देखना चाहिए कि ये भगवान का अंश है जो आपके सामने आया है बीमार होकर, और उस तरह से आपको उनकी सेवा करनी है, तो वही आपकी वैष्णव सेवा के अंदर गिनी जाएगी। अल्टीमेटली क्या है, ये सब चेतना का विषय है। चेतना आपकी कहाँ पर है, कैसे आप देख रहे हो हर चीज को, वो आप जिस तरह से देख रहे हो चेतना के स्तर पर उस तरह से आपको उसका फल मिलेगा। उसको आप गरीब, आप बैठिए बैठिए तो गरीब विद्वास से सोचेंगे आप क्या है ये, बिली भी पीता है ये भी करता है, वो मोतियाबिंद का लेकर हमारे पास में आता है, तो वो देखना कि हम कोई बड़े हैं, अधिकारी हैं, हमारे पास कुछ कला है, ऑपरेशन की हम कर रहे हैं, उसको सेवा कर रहे हैं बेचारे की, ये भाव से करेंगे तो हमारा अहंकार और बढ़ जाएगा। लेकिन हम सोचेंगे कि ये राधा कृष्ण हमारे अंदर है, उनके अंदर भी है, पता नहीं ठाकुर जी हमसे क्या सेवा चाहते हैं, तो भाव से करेंगे तो आपको वो वैष्णव सेवा का लाभ मिलेगा। हले जन्म से ब्रजवासी, ब्रजवासी भक्त वैष्णव है जरूर, लेकिन मैं बाहर की बात करेंगे, मुंबई किसी गांव में जाएंगे वहां पर एक गुंडा आएगा, तो अगर आप सोचते हैं कि तो भगवान उनके अंदर है, वो भी हमारे अंदर है, वो चेतना के साथ सेवा करेंगे तो भी वैष्णव सेवा है। तो सुधारना है हमको अपनी चेतना को। और कोई प्रश्न है? हाँ ऐसा है ना, बेस्ट ये है कि हम उनको प्रसाद दें, पैसा नहीं दे बेस्ट। अगर आपको योजना बनानी पड़ेगी कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, हम सुखा प्रसाद, जैसे हम लोग ड्राइविंग करते हैं तो हमको बताया जाता है गुरु जी के द्वारा कि कार में हमेशा प्रसाद रखो, जब कार में सिग्नल में भिखारी आएगा तो उसको प्रसाद दे। हाँ तो मतलब अगर आप इतने सतर्क हैं तो आपको हमेशा थोड़ा सा प्रसाद अपने साथ रखना चाहिए, उनको देते रहना चाहिए, क्योंकि पैसा देने से वो शायद उसका बीड़ी पिएगा, वो शराब पिएगा, तो कर्म तो लगेगा यार। लेकिन समझो अगर आपके पास प्रसाद नहीं है और वो बेचारा रो रहा है, आपको मांग रहा है कुछ, तो ऐसा कहते हैं कि अपने हृदय को भगवान के भक्ति मार्ग में कोमल बनाए रखने के लिए उसको जरूर देना चाहिए कुछ, कुछ नहीं देने से हमारा हृदय कठोर हो जाता है, इसलिए देना जरूर चाहिए। मांगने वाले को कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि मांगने वाला सबसे नहीं मांगता है, कभी कभी देखो भिखारी जो है ना वो दो चार लोगों से मांगता है, बाकी लोगों से नहीं मांगता है, वो भी हमारे पुराने कोई हिसाब किताब का चक्र है वो तो कैसा ना, देने की जो प्रवृत्ति है ना वो बनाए रखना जरूरी है, टू गिव कॉन्स्टेंटली, इसलिए कुछ ना कुछ देना चाहिए। किसी मांगने वाले को टालना हमारे हृदय को कठोर बना देता है, और अगर इसलिए आपको अगर ये परेशान होता है, आप परेशान करता है आपको इस बात की बात आपको, तो जरूर अपने साथ प्रसाद रखिए, तो आपको ये परेशानी नहीं होगी। वो बोलेगा मैया ये मत दो, 10 रुपया दो, बोलेगा बेटा मेरे पास यही है, यही लो। ठीक है, श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की।